أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم پر جاری ہے اور آج انشاءاللہ اس کی 10ویں آیت. اس آیت میں پروردگار متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بات ہماری یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک خوشخبری دی گئی، ایک بشارت دی گئی حضرت زکریہ کو، اور اس کے بعد تمام مطالب آپ کے اذہان مبارک میں موجود ہے کہ یہاں تک سلسلہ گفتگو اب یہ ہے کہ اب حضرت زکریہ پروردگار متعال سے یہ فرما رہے ہیں کہ رب اجعل لی آیا، کہ پروردگار ایک آیت کو قرار دے، ایک نشانی کو قرار دے، یعنی وہ جب وقت آنے والا ہے کہ جس وقت مجھے یہ فیض عطا ہوگا، یہ رحمت عطا ہوگی حضرت زکریہ کی، حضرت یحییٰ کی صورت میں، تو اس وقت کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا وقت ہے؟ تو ایک آیت اور ایک نشانی قرار دے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ وہ والا وقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت زکریہ یہ بات کیوں جاننا چاہتے تھے؟ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت زکریہ کی دعا، جب انہوں نے دعا کی سب سے پہلے کہ ربی انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک کا ربی شقیہ، اور اس کے بعد والی آیت وحبلی من لدنک ولیہ، پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک ولی اور ایک فرزند عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو اس دعا کے بعد اور جب پروردگار متعال نے انہیں فرزند کی نعمت عطا کی، اس کے درمیان 5 سال کا فاصلہ ہے، 5 سال کا. اور یہ خود یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں دعا سے نا امید نہیں ہونا، یعنی اگر چند، یعنی ایسا نہیں کہ آج دعا کی اور ابھی ہی قبول ہو جائے، اگر کچھ عرصے میں دعا قبول نہ ہو تو ہم نا امید ہو جائے نا. خود حضرت زکریہ کی بھی یہ دعا قبول ہو رہی ہے، اس کو 5 سال کا عرصہ لگا ہے، یہ بات روایت میں موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے. اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ حضرت زکریہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ وقت کب آنے والا ہے، اس سے پہلے مجھے معلوم ہو جائے. سمجھانے کے لیے صرف یہ مثال عرض ہے کہ فرض کریں آپ کا کوئی بہت ہی عزیز اور اقارب کسی دوسرے ملک سے آنے والا ہو، فرض کریں آپ کے والدین گرامی آنے والے ہوں اور کئی عرصے سے آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ کب ہے، کب آپ کا، آپ کی فلائٹ کا وقت کب ہے، کون سا دن ہے، وقت کیا ہے. یہ آپ کیوں پوچھتے؟ تاکہ جا کر ان کے استقبال کر سکیں، ان کی پہلے سے تیاری کر سکیں، ان کے لیے والدین ایک دم سے آپ کے سامنے نہ آئیں بلکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو، تاکہ آپ ان کے لیے آمادگی کر سکیں اور ان کا استقبال کر سکیں. یہی چیز اگر بہت بڑے پیمانے پر لے جائیں تو حضرت زکریہ پروردگار سے چاہتے تھے مجھے وہ وقت کب معلوم ہو کہ وہ وقت کب آنے والا ہے، تاکہ میں زیادہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں شکر گزاری کے لیے، زیادہ مصلی عبادت پر وقت گزاروں، زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر رہوں، تاکہ جب وہ وقت آ رہا ہو تاکہ اس وقت مجھے معلوم ہو. یہ ہے فلسفہ اس چیز کا کہ اس آیت میں جو حضرت زکریہ فرما رہے ہیں رب اجعل لی، قال رب اجعل لی آیا، پروردگار میرے لیے ایک نشانی کو قرار دے. خداوند متعال فرما رہا ہے قال آیتک ان لا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ نشانی میری طرف سے یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ تم اے زکریہ تم 3 دن اور رات تک لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکو گے. ان لا تکلم الناس، ناس کی بات ہو رہی ہے، خدا کی بات نہیں ہو رہی، یعنی 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے. ثلاث لیال سویہ، سویہ یہاں پر لیال کی صفت نہیں ہے بلکہ سویین یہاں پر حضرت زکریہ کی بات ہے. سویین کا مطلب ہے کہ حضرت زکریہ بالکل تندرست ہوں گے، صحیح و سالم ہوں گے، زبان بھی بالکل کام کر رہی ہوگی، سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، گفتگو نہیں کر سکیں گے. یہ نشانی ہے خدا کی. بعض افراد مفسرین اس کو اس جانب لے گئے کہ یہ خاموش روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، نا ये हुक्म तशरीई नहीं है कि एक हुक्म नहीं दिया जा रहा कि आपको 3 दिन तक रोज़ा रखना है, चुप का रोज़ा, खामोशी का रोज़ा, ये ऐसा नहीं है, बल्कि तकवीनी तौर पर निशानी ये होगी परवरदिगार मुताल की कि आप चाहते हुए भी लोगों से हम कलाम नहीं हो सकेंगे, लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। ये खुदा का मोजज़ा है, खुदा की निशानी। जब भी ऐसा मरहला आपकी ज़िंदगी में आ जाए कि आप लोगों से कलाम नहीं कर पाएँ 3 दिन और रात तक, तो समझ लीजिए कि ये वही वक्त है कि जब परवरदिगार मुताल का फैज़ नाजिल होने वाला है हज़रत यहया की सूरत में, कि परवरदिगार ने फरमाया लम नज अल्लहू मिन कबल समिया, कि इससे पहले ऐसी शख्सियत हमने ज़मीन पर नहीं उतारी। कि समियन से बाज़ अफराद ने मुराद लिया कि ऐसा नाम नहीं आया, और बाज़ मुफस्सरीन ने जैसे कि आगा ने भी ये बात अर्ज़ की कि ऐसी ज़ात ही नहीं आई, ऐसी सिफात की हामिल शख्सियत ही नहीं आई अभी तक इस आलम में। तो ये उस वक्त की बात है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मुफस्सरीन का नज़रिया ये है कि जो हज़रत ज़करिया ने ये फरमाया कि कौल रब जली आया, तो ये इस वजह से फरमाया कि मरहले शहूद तक जाना चाहते थे, जैसा कि हज़रत इब्राहिम ने फरमाया रब्बी अरिनी कई फ़तोह मऊत, परवरदिगार अरिनी मुझे ये दिखा, आँखों से ना दिखा, यानी मुझे कल्ब की आँखों से ये चीज़ दिखा कि कई फ़ा तो मऊत, कि तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करता, यानी वो मरहले शहूद और कल्बी से मुझे आगाह कर। वैसे तो मैं यकीन रखता हूँ, हर मोमिन यकीन रखता है, तो हज़रत इब्राहिम भी तरीक़े औला यकीन रखते हैं, लेकिन उस मरहले शहूद को देखना चाहता हूँ। बाज़ मुफस्सरीन ने यह एहतमाल दिया, क्या आगे जवादी आमिर साहब फरमाते हैं हाँ ये एहतमाल भी सही हो सकता है, और बाज़ मुफस्सरीन ने यह एहतमाल दिया कि हज़रत ज़करिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये इबलीस उनसे बात कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इबलीस हम कलाम हो रहा है, ये जो सारी बातें हो रही है ये सब इबलीस, कहीं उनको ऐसा शक हो रहा था कि ऐसा ना हो कि ये इबलीस हो, तो फौरन निशानी मांगी ताकि निशानी से पता चल जाएगा, क्योंकि इबलीस तकवीनी तौर पर कोई इस तरह की निशानी पेश नहीं कर सकता। इस एहतमाल को आगे जवादी आमनी साहब ने मना फरमाया और कहा असलन हो ही नहीं सकता, असलन इबलीस वहाँ पर राह नहीं रखता, वहाँ तक आने की उसके पास राह नहीं है, और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ये तो सारी बात मलाइका से हो रही थी। फ़नादतुल मलाइकतो वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बिगुलामिन, और इस आयत में इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिगुलामिन, वो सूरह मरियम की बात है और वो दूसरी सूरह की बात है। तो ये तो मलाइका से हम कलाम हो रहे हैं और मलाइका से गुफ्तगू चल रही है, और इसके दरमियान खुदा से राज व नियाज हुआ है, तो इबलीस की तो बात ही नहीं। इस एहतमाल को रफ़ा कर दिया। अब यहाँ पर एक इश्काल किया गया है, और जिसने इश्काल किया दर हकीकत उस इश्काल में ही उसका जवाब है। एतराज़ और इश्काल ये किया गया कि इस आयत से ये बात साबित होती है कि अम्बिया और पैगंबरान के पास इल्म गैब नहीं होता, अगर उनके पास इल्म गैब होता तो कभी ये सवाल ना करते, कौला रब जली आया, ये आयत को मांगना, ये निशानी को मांगना, ये बता रहा है कि उनके पास इल्म गैब मौजूद नहीं है। अगर इल्म गैब होता तो मालूम हो जाता कि मेरी दुआ करने के बाद 5 साल बाद मुझे फ़लाँ दिन और फ़लाँ तारीख को मेरा परवरदिगार की जानिब से ये फैज़ अता होगा और ये नेमत और रहमत मुझे अता होगी, बस इल्म गैब नहीं था अम्बिया के पास। आज जवादी आमनी साहब फरमा रहे दकीकन ये आयत बता रही इल्म गैब था। कैसे? देखिए, इल्म गैब ज़ाती तो किसी के पास नहीं, इसका तो कोई भी मुद्दई नहीं है, परवरदिगार मुताल की जानिब से जो इल्म अता होगा, जितना अता होगा वही अम्बिया इलाही के पास है। अब इस पूरे आलम में किसी को नहीं मालूम कि हज़रत ज़करिया को एक परवरदिगार की तरफ से एक फैज़ हासिल होने वाला है, और उससे पहले वो 3 दिन तक लोगों से बातचीत नहीं कर सकेंगे, ना ये कि उन्होंने चुप का रोज़ा रखा होगा, खामोशी का रोज़ा रखा होगा, ना, बल्कि चाहते हुए भी बातचीत नहीं कर सकेंगे। और ये देखें कुरान और उसके मौजज़ात और परवरदिगार मुताल और उसकी ज़ात, कि एक तरफ हज़रत ईसा है जो कि गहवारे के आलम में है, कि बीवी मरियम इशारा करती है फ़ाशारत इलही, बीवी मरियम इशारत करती है कि इससे गुफ्तगू करो, तो कहते कई फ़नुकल्लिमु मन कान फ़िल अहद सबिया, कि हम कैसे उस शख्स से गुफ्तगू कर सकते हैं जो अभी बचपने के आलम में गहवारे में हों। एक तरफ हज़रत ईसा जो गहवारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक तरफ हज़रत ज़करिया है जो बहुत बड़ी उम्र के हो चुके हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त भी हैं और बिल्कुल सालिम भी हैं, और लेकिन उनकी निशानी है कि वो गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। हज़रत ईसा की निशानी ये है वो गुफ्तगू कर रहे हैं जबकि वो उस उम्र के उस हिस्से में जिस हिस्से में गुफ्तगू नहीं हो सकती, और हज़रत ज़करिया की निशानी है कि गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। हालांकि वो उम्र के इस हिस्से में जिस हिस्से में इंसान कुरान की आयत है सवियन बिल्कुल तंदुरुस्त थे, बिल्कुल सही और सालिम थे, कोई मर्ज़ उन पर लाहिक नहीं हुआ, कोई ज़बान बंदी नहीं हुई, कोई नौज़ुबिल्ला कोई फालिज या किसी और चीज़ का मर्ज़ नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी आयत इलाही ये थी कि वो गुफ्तगु ना कर पाए। जब लोगों के पास आते थे तो गुफ्तगु नहीं कर पाते थे, लेकिन जब परवरदिगार से राज़ो नियाज करते थे, मुनाजात करते थे, तो उस वक्त गुफ्तगु फरमाते थे, यानी उस वक्त ज़बान चल रही होती थी, क्योंकि परवरदिगार ने फरमाया आयत और निशानी है कि लोगों से तीन दिन तक हम कलाम नहीं हो सकेंगे, कि यहाँ रात से मुराद फ़कत रात नहीं है बल्कि रात से मुराद रात और दिन दोनों है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आयत इसकी तरफ भी इशारा कर रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बोलना, ये बिल आखिर इंसान में खुशू और खुजू की कमी का बायस बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी बड़ी शख्सियत या आरिफ से किसी से सवाल होता है कि नमाज में इंसान की तवज्जो नहीं रह पाती, इसकी क्या वजह है, तो कहते हैं इसकी वजह ये कि तुमने दिन में गुफ्तगु बहुत ज़्यादा की है, बोला बहुत ज़्यादा है, ज़बान ज़्यादा चलती है। जिस शख्स की ज़बान ज़्यादा चलती है तो उसकी जो कल्बी तवज्जो है वो कम हो जाती है। ये एक किस्म का एक मुलाजिमा आप समझ लें कि एक ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल, यानी उस जगह पर जिस जगह ज़रूरी नहीं है इजाफी तौर पर जहाँ इंसान गुफ्तगु करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कल्बी हालात और एहसासात पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर चूँकि हज़रत ज़करिया ये चाहते थे कि परवरदिगार मुताल की खुशी और खुजू में गर्क हो जाएँ, इसलिए निशानी को मांगा था, इसलिए आयत को मांगा था, तो उसके बदले परवरदिगार ने भी ये मौजज़ा अता किया कि आप लोगों से हम कलाम नहीं हो सकेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र गुज़ारी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और खुजू का मुजाहरा कर सकें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।